मिस्टर पॉटर के फार्म हाउस पहुंचकर निक वहां खड़े होकर अंदर की तरफ देख रहा था। आखिरी बार वो प्रियल के साथ ही आया था। बीते लम्हों को याद कर उसकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। बाकी सब लोग वहां पहले ही पहुंच चुके थे। काम करते हुए जीनी की नज़र खिड़की के बाहर पड़ी तो उसने देखा कि निक अंदर आने के बजाय बाहर खड़ा था। जीनी ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, रॉन, अपने दोस्त से बोलो कि अंदर आ जाए। उसकी बात सुनकर रॉन उसके पास आया और थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तुम और एमा उससे बात नहीं करती तो अपनी बात मेरे से क्यों बुलवाती हो? पिछले 5 साल से बेचारे से बात नहीं कर रहे, ऊपर से। जीनी ने उसकी बात काटते हुए बीच में बोला, मैं उससे तब बात करूंगी जब वो मेरी दोस्त को वापस लेकर आएगा, उसने तो उसे कहीं ढूंढा तक नहीं। निक का कहना है कि जो कुछ भी उसने प्रियल के साथ उस दिन किया उसके बाद वो उसे फेस नहीं कर पाएगा। उन दोनों बात करते देख एमा उनके पास गई और कहा, हाँ तो गलत ही बोल रहा है, वो तो प्रियल थी जो घर से चली गई, मैं होती तो पहले इसका मुंह तोड़ती और फिर बाद में वहां से जाती। वो तीनों आपस में बात कर रहे थे कि जीनी की मॉम जेनिफर आ गई। उन्होंने निक को बाहर खड़े देखा तो उनके चेहरे पर भी उदासी थी। जेनिफर ने जीनी को डांटते हुए कहा, जीनी, एमा अपनी जिद छोड़ो और जाकर उससे बात कर लो। जीनी ने आंखें तरेर कर जवाब दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे बात करने या ना करने से, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बोलते हुए जेनिफर दूसरी तरफ चली गई और जोर से चिल्लाते हुए कहा, जैन, जैन जाओ बाहर और अपने भाई को लेकर आओ, कब से बाहर परेशान खड़ा है। मिस्टर डिसेना ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि उसे अकेला मत छोड़ा करो, वो जब अकेला होता है तो उसे ज्यादा फील होता है कि प्रियल उसके साथ नहीं है। जैन वहां से बाहर गया। उसे देखकर निक ने जल्दी से खुद को संभाला और उसे देखकर हल्का मुस्कुराया। जैन ने उसे उदास देखकर उसके गले लगते हुए कहा, भाई आप ठीक तो हो ना? निक ने उसे थपथपाते हुए जवाब दिया, हाँ, और तू इतना बड़ा कब से हो गया जो मुझे संभाल रहा है? नहीं भाई, मैं हमेशा आपका वही भाई बना रहना चाहता हूँ जिसे आप बचपन में सभी छोटी छोटी चीजें सिखाते थे। वो गई वो मुझे छोड़कर, मैं जाने का बोलूंगा तो वो चली जाएगी, निक ने नम आंखों से कहा। भाई अगर आप ठीक नहीं हो तो हम घर चलते हैं। निक अचानक अपने विचारों के जाल से बाहर आया। वो तुरंत जैन से होकर बोला, नहीं जैन, ये मीटिंग भी जरूरी है और इस मिशन पर जाना भी, पता नहीं कितनी मासूम जिंदगियां दांव पर लगी होंगी। जैन ने उसकी बात पर हामी भरी। निक उसके साथ अंदर चला गया। जीनी ने उसे देखकर अपनी नज़र फेर ली। निक उससे काफी टाइम बाद मिल रहा था। प्रियल के जाने के बाद से जीनी और एमा दोनों ने ही निक से बात करना बंद कर दिया था। उनके नाराज होने की एक वजह यह भी थी कि निक ने प्रियल को ढूंढने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। जीनी प्रेग्नेंट होने की वजह से इंस्टीट्यूट नहीं आ रही थी। निक ने उसे उदास निगाहों से देखकर वहां जाकर बैठ गया। उसके आते ही मिस्टर पॉटर ने कहा, अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को साइड में रखो और आ जाओ। जीनी, जेनिफर, प्लीज आप दोनों बाहर वॉक कर लो, वैसे भी वेदर काफी अच्छा है। जीनी ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, डैड सीधे सीधे ही बोल दीजिए ना कि सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है और तुम दोनों यहां से बाहर चली जाओ। उसकी बात सुनकर निक ने धीरे से कहा, जब सब पता है तो यहां रहना ही क्यों है? उनके बोलने पर जीनी और जेनिफर दोनों बाहर गार्डन में चली गईं। जाते वक्त उन्होंने दरवाजा बंद किया और बाहर लॉन में बैठकर हल्की धूप सेकने लगी। जेनिफर ने वहां बैठते हुए कहा, तुम दोनों निक से बात नहीं करती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों आप सब लोग उसकी साइड लेते रहते हो। इस बार वो गलत है, एक बार भी उसने अपनी गलती को सुधारने की कोशिश नहीं की मॉम। जेनिफर ने जवाब दिया, वो अकेले निक की ही गलती है सब नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग किसके बीच नहीं होती, कौन से ऐसे हस्बैंड वाइफ हैं जो एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते। निक ने प्रियल को गुस्से में जाने के लिए कहा और वो चली गई। जाने के लिए कहा नहीं मॉम, धक्के देकर निकाला है, जीनी ने गुस्से में कहा। जीनी, वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों साथ थे, प्यार था, अगर कुछ गलतफहमी वो भी गई थी तो समझाती उसे या वेट करती कि उसका गुस्सा शांत हो। उनका कौन सा पहली बार झगड़ा हुआ था जो निक ने जाने के लिए कहा और वो चली गई। इस मामले में अगर निक गलत है तो सही तो प्रियल ने भी नहीं किया था, पर वो उसे ऐसे कैसे जाने का बोल सकता है मॉम, आप नहीं थी वहां पर, वो इतना गुस्से में था उस दिन, उसे सही गलत कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जेनिफर ने उसे समझाते हुए फिर से कहा, अच्छा एक बात बताओ, अगर रॉन किसी दिन तुमसे गुस्सा हो जाए और तुम्हें बोले कि तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है मुझे, मेरी लाइफ से चली जाओ, तो तुम क्या करोगी? वो कभी ऐसा नहीं करेगा मेरे साथ, प्यार करता है वो मुझसे, हाँ हो सकता है कि कभी किसी दिन गुस्सा हो जाए पर कभी भी मुझे प्यार करना नहीं छोड़ सकता। जीनी का जवाब सुनकर जेनिफर ने मुस्कुराते हुए कहा, एग्जैक्टली, यही तो मैं कहना चाहती हूँ, भले ही हम किसी से कितना भी गुस्सा हो जाए पर क्या हम किसी से प्यार करना छोड़ सकते हैं? प्रियल अच्छे से जानती थी कि निक उसे कितना प्यार करता है, वो उसे छोड़कर गई तो जी नहीं पाएगा, और अब हालत देखो उसकी, वो उस दिन परेशान होगा तो बोल दिया होगा गुस्से में, वरना तुम भी जानती हो कि जान बसती थी उसकी प्रियल में, दत्तत की वजह से उसकी पूरी लाइफ तबाह हो गई, भाई तक खो दिया था उसने, पर अपने दर्द को साइड में रखकर उसने प्रियल को संभाला था। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि वो कितना इमोशनल है, लेकिन प्रियल के सामने एक आंसू तक नहीं आने दिया उसने। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी एक बार भी उसने कभी प्रियल पर सवाल नहीं उठाया। तुम्हें निक गलत लगता है तो प्रियल भी गलत है। हाँ, तुम्हें प्रियल से भी नाराज हूँ, मिलने दो, कभी मैं बात नहीं करूंगी उससे, निक ने निकाला तो वो, हम कुछ नहीं लगते उसकी जो ऐसे बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई। और मैं इस वजह से निक से बात नहीं करती कि उसने एक बार भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। जेनिफर ने जीनी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उनकी बात मानने तक को तैयार नहीं थी। अंदर चल रही मीटिंग भले ही ऑफिशियल हो, लेकिन वो इसे पर्सनल तरीके से ही हैंडल कर रहे थे। निक ने मीटिंग शुरू होने से पहले कहा, रॉन, तुम जीनी को छोड़कर नहीं जाओगे, वो प्रेग्नेंट है एंड उसे अभी तुम्हारी जरूरत है। मिस्टर डिसेना ने निक की बात पर सहमति जताई और कहा, आई थिंक निक इज राइट। रॉन, अगर तुम जीनी के पास रुकना चाहते हो तो अभी इस मीटिंग से बाहर चले जाओ। रॉन ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। जीनी का ख्याल रखने के लिए यहाँ आप सब लोग हो। ओके विल्सन, ये सब बाद में डिसाइड करते रहना। मैंने अपने तरीके से पूरी प्लानिंग कर ली है। हम चार लोगों की टीम होगी, जिसमें निक, रॉन, मैं और जैन होंगे, हेमा ने कहा। मिस्टर पॉटर ने उसकी बात काटते हुए कहा, चार लोगों की नहीं, सात लोगों की टीम बनेगी। तुम चारों के अलावा आलिया भी जाएगी यहाँ से, और आर्किड ऑलरेडी इस मिशन को इंडिया से ज्वाइन कर चुका है। एंड डोंट फॉरगेट दैट ब्लू सनशाइन, निक ने हैरानी से पूछा। पर है कौन ये ब्लू सनशाइन? एज आई नो वो एक सीक्रेट एजेंट है, तो उसे कोई नहीं जानता होगा। फिर वो हमारे मिशन को कैसे ज्वाइन करेगी? और तुम इतनी कॉन्फिडेंट होकर कैसे बोल सकती हो कि वो एक लड़की ही है? कोई लड़का भी हो सकता है रॉन। एग्जैक्टली, कोई भी हो सकता है। जो भी होगा वो हम सीक्रेटली ही ज्वाइन करेगा। हमें बस इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी उससे, उसका रोल बस इतना ही है। जैन, बट आलिया तो मीटिंग में है ही नहीं, फिर वो कैसे?
वो लोग बात कर रहे थे कि तभी बीच में दरवाजा खुलने की आवाज आई और आलिया अंदर आते हुए कहा, सॉरी टू बी लेट, रोहन और शालू की वजह से आने में टाइम लग गया। मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? नहीं, अभी तक तो नहीं, जैन ने जवाब दिया। मुझे आपके साथ इस मिशन पर जाकर बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आपके साथ काम करने को मिल रहा है तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आलिया ने वहां बैठते हुए कहा। लेट मी क्लियर वन थिंग आलिया, वहां सीखने के लिए कुछ नहीं होगा। तुम ज्वाइन करने से पहले ही बता देता हूँ कि वहां रिस्क बहुत है, न केवल जान का। बिल्कुल, बोलते हुए निक एक बार के लिए रुका और फिर आगे कहा, केस प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड है। आलिया ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, भाई शायद आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ट्रेनिंग तो मेरी भी हुई है। निक, अगर मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट करता तो तुम्हारा नाम सजेस्ट ही नहीं करता। आलिया, वो आपने मेरा नाम सजेस्ट किया, आप सच में चाहते हैं कि मैं इस मिशन को ज्वाइन करूं? हाँ जरूर, हम कल सुबह अल्फाज मॉर्निंग इंडिया के लिए निकलना होगा, निक ने सामान्य तरीके से जवाब दिया। मिस्टर डिसेना ने मीटिंग को खत्म करते हुए कहा, ऑल द वेरी बेस्ट, याद रखना गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है, एक गलती हम सब पर भारी पड़ सकती है। पता नहीं इस मिशन में कौन कौन सीक्रेटली जुड़ा हुआ है। सबने उनकी बात पर हामी भरी और वहां से अपने अपने घर को निकल गए। निक मिस्टर पॉटर के फार्म हाउस से निकलकर सीधे अपने घर गया। वो अपने रूम में बैठकर काम कर रहा था जबकि आलिया और प्रांजल उसकी पैकिंग कंप्लीट कर रहे थे। प्रांजल ने पैकिंग करते हुए पूछा, वैसे क्या मिशन है आप लोगों का, मुझे कुछ तो बता ही सकते हो ना? आलिया ने उसकी बात पर हंसते हुए जवाब दिया, नहीं प्रांजल, हम कुछ नहीं बता सकते, तुम बस पीछे से अपना और प्रियंका ख्याल रखना। प्रियंका तो ज्यादातर टाइम इंस्टीट्यूट में ही बीतता है, आप लोगों के जाने के बाद पीछे से मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, प्रांजल ने उदास होकर कहा। वहां बहुत खतरा होगा प्रांजल, मुझे नहीं लगता कि भाई तुम्हें हमारे साथ जाने की परमिशन देंगे। हम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वहां जाकर हम लोग भी साथ रहेंगे या नहीं, और रहेंगे भी तो कहाँ रहेंगे। अगर सिर्फ कहने की बात है तो मैं अपना अरेंजमेंट खुद कर लूंगी। चाचा चाची ने हमें घर से निकाल दिया था, लेकिन बड़े पापा और बड़ी मम्मी अभी भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं, मैं उनके यहाँ चली जाऊंगी, प्रांजल ने कहा। आलिया ने काफी देर तक उसकी बात पर गौर किया और कहा, ठीक है, फिर हम इस बारे में भाई से बात करते हैं, अगर उन्होंने हाँ कहा तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रांजल ने उसकी बात पर हामी भरी और निक से बात करने के लिए उसके कमरे में गई। आलिया भी उसी के साथ थी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि निक अपने कमरे में सो रहा था और सोते वक्त उसने प्रियल की जैकेट को अपने सीने से लगा रखा था। उसे देखकर प्रांजल ने उदास होकर कहा, जीजू आज भी दीदी से उतना ही प्यार करते हैं, उनके एहसास को महसूस करने के लिए कैसे उनकी जैकेट को हक करके सो रहे हैं। काश हम इंडिया में कहीं तो प्रियल मिल जाए, भाई की हालत मुझसे नहीं देखी जाती, कितना कुछ बदल गया है ना उसके जाने के बाद। निक को उस हाल में देखकर आलिया के चेहरे पर भी उदासी थी। हाँ, जीनी और एमा ने तो जीजू से बात करना ही बंद कर दिया है। आर्किड भैया और एवा दीदी अगर साथ है भी तो वो भी यूएसए से इंडिया में सेटल हो गए हैं। ऐसे लग रहा है सबकी लाइफ चल तो रही है, लेकिन आज भी सब वहीं पर रुके हुए हैं। वो दोनों वहां खड़े होकर आपस में बात कर रही थी कि तभी निक की आंख खुली और वो अचानक से उन दोनों को अपने सामने देखकर हैरान रह गया। उसे अपने कमरे में किसी का आना पसंद नहीं था, ऐसे में प्रांजल और आलिया को उसे सोते हुए देखना उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वहीं अचानक निक के जागने पर दोनों भी घबरा गईं।